मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 25 सितंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको ध्यान होगा कि मेरी समस्या शायद 3 सप्ताह या 1 महीने पहले मैंने खासकर ईगो विषय को लेकर आप सबसे बहुत लंबी बातचीत की थी, जिसे हम हिंदी में अहम कहते हैं, बोलचाल की भाषा में घमंड कहते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि उस समय मुझे कुछ मेल मिले थे और उन्होंने जानना चाहा था कि सर ये जो ईगो है या घमंड है या अहम कह लीजिए, उसमें और स्वाभिमान में क्या फर्क है। स्वाभिमान, और उनका पूछना बिल्कुल सही था क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से क्या, मैं समझता हूं कि शायद ज्यादातर लोग स्वाभिमान को ईगो से जोड़कर देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने अपने ईगो को कम किया, जरा भी कम किया, तो इससे हमारा स्वाभिमान कम हो जाएगा या हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाएगी। तो सामान्यतया वे स्वाभिमान को ईगो का पर्याय समझने लगते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हम सबसे होती है। बड़ी क्या मतलब, ये हम सबसे होने वाली जो भयानक गलतियां हैं उनमें से एक गलती है। क्योंकि मित्रों ये तो मानकर चलिए आप चाहे कुछ भी हो, क्यों ना कुछ भी हो, और जो आपके अंदर ईगो है उसका कारण भी ठीक है कि सही है। मान लीजिए आप राजा हैं, मान लीजिए कि आप करोड़पति हैं, तो आपको अपने धन का घमंड है। आप बहुत बड़े पद पर हैं तो आपको अपने पद का घमंड है। तो अगर घमंड है तो यह हम कह सकते हैं कि भाई जो घमंड है, जो ईगो है, उसका आधार तो सही है। वो चीज आपके पास है ही नहीं और आप घमंड करें, तब हम कहेंगे कि यार ये क्या है, मतलब बिना आधार के ये घमंड कर रहा है। लेकिन आधार है और आप में घमंड है तो क्या उसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या वह सही है क्योंकि आपके पास आधार है? उस आधार पर भी यह रिजेक्ट करने वाली गुण है, रिजेक्ट करने वाला तत्व है। यह होना ही नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से चाहे जहर की पुड़िया कितनी भी महंगी क्यों न हो, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जिंदगी में, या खाने के लिए या चखने के लिए। तो जो घमंड है, जो ईगो है, वो जहर की पुड़िया ही है। लेकिन अगर हम उसे स्वाभिमान का पर्याय मान लेते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर वो जो घमंड, वो ईगो हमारी जीभ पर आने लगता है और उसके स्वाद को हम महसूस करने लगते हैं और फिर हम अपने आप को उसके जहर के प्रभाव से बचा नहीं पाते। और मित्रों यह गलती हम सबसे लगभग लगभग होती ही है, किसी से ज्यादा हो जाती है, किसी से कम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपसे स्वाभिमान के बारे में कुछ बातें करूंगा और आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि सर इतने पहले हमने आपसे प्रश्न पूछा था और आज आप उसका जवाब दे रहे हैं। मित्रों उसका कारण है, मैं आप लोगों से पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मुझे चीजें जिंदगी से मिलती हैं। मैं किताबों से तो जितना जानना था लगभग लगभग जान चुका हूं, अब मैं जिंदगी से जानना चाहता हूं, अपने समय को जानना चाहता हूं, अपने लोगों को जानना चाहता हूं और उसके माध्यम से मैं खुद को जानना चाहता हूं। दरअसल मुझे एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण जीवन का मिला और मैंने सोचा कि यार इससे खूबसूरत और कोई दूसरा एग्जाम्पल स्वाभिमान को लेकर नहीं हो सकता। यस मित्रों, इससे खूबसूरत उदाहरण। तो आज मैं आप सबके सामने उसी खूबसूरत या लाइव एग्जाम्पल, जीवंत उदाहरण को प्रस्तुत कर रहा हूं। आप खुद देखिए कि इसमें ईगो कहां है, स्वाभिमान कहां है, क्या है, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। अगर वक्त हुआ तो मैं अपनी तरफ से अपनी बात बता दूंगा, लेकिन निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा, क्योंकि देखिए मेरी समझ आपके काम नहीं आएगी, आपको अपनी ही समझ विकसित करनी पड़ेगी। मैं तो अपनी समझ को आपकी नॉलेज की थाली में परोस रहा हूं, आप उसे खाइए, उसके स्वाद का अनुभव कीजिए, उसे पचाइए और पचाने के बाद फिर अपने दिमाग में लगाइए, अदरवाइज तो मेरी चीज मेरे तक सीमित रह जाएगी। मित्रों हुआ ये कि, चलिए स्थान का नाम छोड़ते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे सास और मेरे ससुर साहब, हम लोग चारों लोग एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर थे, उतरे। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर उतरे, मैं देख करके दृश्य को चौंक गया, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर जैसे ही हम उतरने वाले थे, हमें एक कुली दिखाई दी। अंडरलाइन कर रहा हूं, कुली दिखाई दी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुली दिखाई दिया। एक महिला थी जो बकायदे कुली का ड्रेस पहने हुए थी, शरीर से हृष्ट पुष्ट थी और वो वहां पर खड़ी थी। राइट, मैं होता तो शायद मैं उसे नहीं बुलाता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं क्यों नहीं बुलाता, मतलब मेरे अंदर वो नैतिकता काम कर रही होती कि एक महिला से कैसे वजन उठवाया जाए। लेकिन मेरे फादर इनला जो हैं वो थोड़े से अलग अप्रोच के हैं, उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अगर ये महिला एक काम कर रही है तो इस काम का सम्मान उसे दिया जाना चाहिए क्योंकि वो एक काम कर रही है। मित्रों, उसको देखने के बाद हम लोग भावुक तो हो ही गए थे कि एक महिला, पहली बार, मतलब अखबारों में पढ़ने में आता था लेकिन पहली बार हमने किसी महिला को कुली के रूप में देखा था। आप सोच करके देखिए कि अगर महिला कुली के रूप में है तो क्या स्थिति होगी, है ना। वो अपने सिर पर सामान रखेगी, वजनी सामान, जिसे हम पुरुष होकर नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं ले जाने की स्थिति में उसको वो उठाएगी, अपने सिर पर उठाएगी। इसके बाद वो प्लेटफार्म पार कराएगी, 5 नंबर प्लेटफार्म से 1 नंबर प्लेटफार्म पर ले जाएगी और प्लेटफार्म की ऊंची सीढ़ियां चढ़ेगी और इसके बाद उन सीढ़ियों से उतरेगी भी और इसके बाद फिर वेट करेगी और इसके बाद ट्रेन में चढ़ाएगी, ये महिला करेगी। खैर मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, तब आप सही मायने में चीजों को पकड़ पाएंगे, नहीं तो एक छोटी सी घटना बनकर के रह जाएगी। उन्होंने उस महिला को बुलाया और कहा कि ये सामान लेकर चलना है। उसने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ मैं चलूंगी। उससे पैसे की बात की गई तो उसने ये कहा कि आप जितना भी दे दीजिएगा। तो सामान्यतया जो अनुभव होता है कुली के साथ वो बहुत बेहतर नहीं होता, बाद में वो झगड़ा करते हैं। तो उससे पूछा गया कि भाई नहीं तुम कितना लोगी, तुम बता दो, कुछ तो बता दो। तो उसने एक रकम बता दी। राइट, अब हम रकम को भी छोड़ते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम असली में इन्हीं सब चीजों में तो फंस जाते हैं, इसीलिए तो मेन चीज छूट जाती है। ठीक है, अब जब उसके सिर पर सामान रखने की बात आई तो हम लोग देखकर दंग रह गए। आप लोगों का अनुभव होगा कि जब कुली के सिर पर सामान रखना होता है तो एक अटैची तो उठा करके वो अपने सिर पर रख लेता है, लेकिन जब उसके ऊपर दूसरी अटैची रखनी होती है तो वो आपसे मदद मांगता है कि उसके सिर पर रखवा दी जाए, क्योंकि उसके सिर पर ऑलरेडी एक अटैची है तो झुक कर उठाना और उसे संभाल कर ऊपर रख पाना संभव नहीं होता है, या कह लीजिए आसान नहीं होता है। मित्रों, आश्चर्य की बात थी कि एक अटैची सिर पर रखने के बाद उसने दूसरी अटैची उठाई और उसे भी अपने सिर पर रख ली। सच पूछिए तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरी पत्नी को भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन चलिए, उसने सिर पर 2 अटैचियां रखी, 1 अटैची हाथ में ली, बाकी सामान हम लोगों ने लिया। हम लोगों को ये आत्मा हम लोग की अलाउ नहीं की कि हम इसके कंधे पर भी 1-2 थैले टांग दें। और इसके बाद चलिए हम लोग आ गए और बैठ गए, उसने बकायदे हम लोगों का सामान चढ़ा दिया ट्रेन में, और ट्रेन में चढ़ाने के बाद बकायदे उसको पैसे दिए गए और पैसे जितने उसने मांगे थे उसको राउंड अबाउट कर दिया गया, यानी कि जो उसने मांगे थे उससे लगभग 1.5 गुना राशि उसको दी गई। इस बीच में जब वो ट्रेन का इंतजार हो रहा था तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी पत्नी उनसे बातचीत कर रही थी। मैं और मेरे फादर इन लॉ थोड़े से आस स्टेशन पर टहलने लगे। खैर, इसके बाद जब वो सामान चढ़ा करके ट्रेन से जाने लगी तो मेरी पत्नी ने जो हमारे खाने का पैकेट था वो उसको दिया और बोला कि ये लो तुम खा लेना। तो उसने मना किया कि नहीं 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 नहीं, मेरी अभी ड्यूटी खत्म हो जा रही है और इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी और मैं खा लूंगी वहां। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम रख लो, ये तुम खा लो, ये रख लो, और ये बिल्कुल ताजा है, जूठा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये बिल्कुल पैक्ड है। बोले नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसने उसे बड़े आराम से स्वीकार कर लिया और मुस्कुराती हुई वो वहां से चली गई। उसकी मुस्कुराहट बहुत भली लगी, बहुत अच्छी लगी, यानी कि उसके चेहरे पर तनाव वगैरह कुछ भी नहीं था। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दे रहा हूं। जो मेरी पत्नी और मेरी मदर इन लॉ ने उनसे बात की थी उसमें यह पता लगा था कि 2 महीने पहले ही उस पत्नी के पति का निधन हो गया। उसके 5 बच्चे हैं, उसका देवर भी वहीं कुली है, तो देवर की मदद से उसने जो भी कुली का लाइसेंस होता है उसका प्राप्त कर लिया है और वह बकायदे स्टेशन पर अब कुली का काम कर रही है। मेरी पत्नी से जब मैंने कहा कि यार तुमने खाने का डब्बा उसको दे दिया, अब हम लोग क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप जरा सोचिए कि अभी रात में हमारे ट्रेन का टाइम 9:05 था छूटने का, कि 9:05 हो गए हैं, ये घर पहुंचेगी आधा घंटे एक घंटे में, पता नहीं कहां घर है, और इसके बाद वो बनाएगी और फिर बच्चों को खिलाएगी और खुद खाएगी, तो कम से कम वो खुद तो खा ले, हम लोगों का क्या है, हम लोग तो अभी मंगा लेंगे ट्रेन से, और रात में हम वैसे ही कोई ज्यादा नहीं खाते हैं, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी था। खैर, पुरुष अलग तरीके से सोचते हैं, महिलाएं अलग तरीके से सोचती हैं, और ये दोनों में अंतर है। मित्रों, बहुत आत्मा को शांति मिली। मैं दोनों जगह गलत था, भयानक रूप से गलत था। पहला तो ये कि उसको क्यों सामान उठाने के लिए बुलाया जाए, और दूसरा जब मैंने अपनी पत्नी से यह प्रश्न किया कि तुमने क्यों उसे दे दिया, ये दोनों जगह मैं भयानक गलत था। ये पुरुष का दिमाग होता है या जो भी कह लीजिए, वहां दूसरे दिमाग ने काम किया और मित्रों वो महिला चली गई। बस ये कुल मिलाकर कहानी है। मैंने उस कहानी के महत्वपूर्ण अंश लिए हैं, बाकी चीजें काट छाट करके छोड़ दिए हैं, लेकिन झूठ एक शब्द भी मैंने नहीं कहा है। घटना ज्यों की त्यों सुनाई है। अब मेरी आप सबसे एक अर्ज है, अर्ज यह है दोस्तों कि आप किसे स्वाभिमान कहते हैं समझने की कोशिश कीजिए, घमंड क्या होता है उसे समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद उसे आत्मसात कीजिए। सुनने से कुछ नहीं होगा, आत्मसात करने से होगा। जब आपके आत्मा का वो हिस्सा बन जाएगा तब वो आपके आचरण में आने लगेगा। और मान करके चलिए कि जिस दिन आप स्वाभिमान और घमंड इन दोनों के अंतर को समझ लेंगे, आपकी जिंदगी बिल्कुल एक अलग रास्ते पर चल पड़ेगी, उसकी दिशा अलग होगी, उसकी मंजिल अलग होगी, और सच पूछिए तो मंजिल तक पहुंचने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।